ಸೀತಾಬಲಾವ್ರಜಂ ಸಿದ್ಧ ಮೈಮಾರಂಶಥ ಕ್ಷಪಃ ಯದುದ್ದಿಶ್ಯ ವ್ರತಂ ಇದಂ ಚೀರುರ್ ಆರ್ಯಾರ್ಚನಂ ಸತಿ. ಶ್ಲೋಕ ನಿಕಲಾಯ ಪ್ರಭು. ಏಕ ಸಮಯ ಐಸೆ ವೋ ಗೋಪಿಯೋ ನೆ ವ್ರತ ಕಿಯಾ, ಉಸ್ ವ್ರತ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತ. ಪೂರೆ ಏಕ ಮಹಿನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಗೋಪಿಯಾ ವ್ರತ ಕರ್ತಿ ರಹಿ. ಹೇಮಂತೆ ಪ್ರಥಮೆ ಮಾಸಿ ನಂದ ವ್ರಜ ಕುಮಾರಿಕಾಃ. ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಾ ಜೊ ಬೃಂದಾವನ್ ಹೈ ವಹಾ ಕಿ ಕುಮಾರಿಯೋ ನೆ ಹೇಮಂತ ಜೊ ಋತು ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಮಾಸ ಮೇ, ಔರ್ ಯೇ ಮಾಸ ಹೋಗಾ ಫಿರ್ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಯೇ ಮಾಸ ಮಹಿನಾ ಆತಾ ಹೈ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ. ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋ ಅಹಂ ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಹೈ. ಸಭಿ ಮಾಸೋ ಮೇ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ಮಹಿನಾ ಮೈ ಹೀ ಹೂ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಗೀತಾ ಮೇ ಕಹಾ. ತೋ ಉಸ್ ಮಹಿನೆ ಮೇ ಜಮುನಾ ಕೆ ತಟ ಪರ್ ಉನ್ನೆ ಮಂದಿರ ಬನ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ ಬನ್ನಾ ಜಮುನಾ ಕೆ ಹೀ ಬಾಲೂ ಸೆ ಉನ್ನೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಿ ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಬನ್ನಾ ಔರ್ ವ್ರತ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ ಹರ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಕೋ ಜಾಯಾ ಕರ್ತಿ ಥೀ ವಹಾಂ ಪರ್ ಔರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತಿ ಥೀ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ಅಧೀಶ್ವರಿ ನಂದಗೋಪಸುತಂ ದೇವಿ ಪತಿಂ ಮೇ ಕುರುತೇ ನಮಃ. ಹಮ್ ಆಪ್ ಸಬ್ ಆಪ್ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ಹಮಾರಿ ಏಕ ಹೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ, ಹೇ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾಯಾ ಹೇ ಮಹಾಯೋಗಿನಿ ಹೇ ಅಧೀಶ್ವರಿ ನಂದಗೋಪಸುತಂ ದೇವಿ ಪತಿಮೆ ಕುರುತೈ ನಮಃ. ಔರ್ ಕೋಯಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ನಹಿ ಹೈ, ಬಸ್ ಜೀವನ್ ಕಿ ಅಬ್ ಏಕ್ ಹೀ ಅಭಿಲಾಷಾ ಬಚಿ ಹೈ. ಔರ್ ವೋ ಯೇ ಹೈ ನಂದ ಗೋಪ ಸುತಂ ಪತಿಮೆ ಕುರುತೈ ನಮಃ. ಹಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಹಮ್ ಪರ್ ಕೃಪಾ ಕರೋ ಔರ್ ಕೃಪಾ ಕರ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕೋ ಜೋ ನಂದ ನಂದನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೈ ಉಸೆ ಹಮೆ ಪತಿ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರಾ ದೋ. ಪತಿ ಮೇ ಕುರುತೇ ನಮಃ. ಪೂರೆ ಏಕ ಮಾಸ ಕೆ ಲಿಯೆ ಗೋಪಿಯಾ ಯೇ ವ್ರತ ಕರ್ತಿ ರಹೆ. ಅಬ್ ಅಬ್ ಬಾರಿ ಥಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ. ಹಮ್ ಲೋಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ಕೆ ಜಾತೆ ಹೈ, ಫಿರ್ ಬಾರಿ ಕಿಸ್ಕಿ, ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಬಾರಿ. ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಭಗವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಹಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಠೋಕ್ ಕೆ ತೋ ಗಯೆ. ಫಿರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಿಸ್ಕೋ, ಭಗವಾನ್ ಹಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಿ ತೋ ಹಮ ಲೋಗ ಹಮಾರಾ ಕಾರ್ಯ ಹೋ ಗಯಾ. ಅಬ್ ಕಾರ್ಯ ಕಿಸ್ಕಾ ಶುರು ಹೋತಾ ಹೈ, ಠಾಕುರ್ ಜಿ ಕಾ ಶುರು ಹೋತಾ ಹೈ. ತೋ ಗೋಪಿಯೋ ನೆ ತೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಿ ಪೂರೆ ಮಾಸ ಭರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಔರ್ ತೋ ಕೋಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ हृदय से करता है। ऐसी प्रार्थना कभी खाली फुकट नहीं जाती है। हर गंभीर प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। प्रार्थना में शक्ति है और भक्ति पूर्वक की हुई प्रार्थना भगवान को प्रेम से वशीभूत कराती है। और भगवान से कुछ करवाती है कार्य, कुछ उस प्रार्थना का फल देने में समर्थ होती है प्रार्थना। तो गोपियों की प्रार्थना भगवान ने सुन ही ली, तो भगवान आए। अब वो व्रत का, उस पूरे मास का अंतिम दिवस था, तो कृष्ण आए। गोपिया श्री जमुना में प्रातः काल में ही स्नान कर रही थी। उनके सारे वस्त्र थे नदी के तट पर। तो कन्हैया, ये नंद गोप सुत, नंद गोप के पुत्र आए और उन्होंने गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और जाके बैठे कदम के डाली पर। मुझे तो उस वृंदावन के वानरों का स्मरण हुआ। वृंदावन के वानर भी क्या करते हैं, ऐसा ही कुछ, कभी कभी चश्मा ही ले जाते हैं, पहले कंधे पर बैठ जाते हैं, कहीं से पता नहीं चलता, वहां से उठा के बड़े आराम से और फिर कहीं बैठ जाते हैं ऐसे। कभी की अब आपके हाथ की थैली लेंगे, आपके सामने बैठ के खोलेंगे थैली और जो उपयोगी केला इत्यादि सामग्री लेके चल बसेंगे। जैसे चोर है वृंदावन के वानर चोर, तो इस मक्खन चोर ने अभी अब किसकी चोरी की, गोपियों के वस्त्र के चोर बने, वस्त्रों को हर लिया, वस्त्र हरण, गोपी वस्त्र हरण। तो गोपिया बेचारी ठंडी में वहां मर रही थी। हर रोज तो डुबकी लगाई, इन एंड आउट, बाहर आ जाती थी, लेकिन आज कैसे बाहर आ सकती थी, वस्त्र ही नहीं थे वहां। ये आई तो वस्त्र नहीं है, तो पानी में ही रह गई। प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, वस्त्रों के लिए प्रार्थना करो। अब मेरे लिए प्रार्थना करते थे तो मैं तो, तुम लोगों ने पुकारा और मैं चला आया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं निश्चित ही नहीं आता आप अगर मुझे नहीं पुकारते तो, कसूर तो मेरा नहीं है, आपकी प्रार्थना का है। तो ठीक, मैं आ ही गया तो अब वस्त्र चाहिए तो पुनः प्रार्थना करो। तो उन्होंने पुनः प्रार्थना की और प्रभु ने गोपियों के अंत में वस्त्र लौटा दिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे जो कृष्ण बुक नामक जो हमारा ग्रंथ है, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, स्त्री अपने पति के उपस्थिति में ही विवस्त्र होती है, रहती है। तो इस भाव से भी भगवान ने उनके उनको वस्त्रों से अलग कर दिया। मतलब ही दूसरे शब्दों में क्या किया था उन्होंने, उन गोपियों को गोपियों के पति के रूप में, गोपियों के पति बने भगवान। कहा तो नहीं उन शब्दों में, हाँ हाँ मैं यह आ गया, मैं आपका पति, कर लो स्वीकार मुझे, लेकिन वस्त्र ही छीन लिए और उनके उपस्थिति में विवस्त रही गोपिया। मतलब ही पति बने भगवान उन गोपियों के। तो उस लीला के अंत में या उस वार्तालाप उस संवाद के अंत में कृष्ण ने यह शब्द कहे, क्या है, यात अबला। ये अबला अबला जिनमें बल नहीं है वो अबला, मतलब तुम गोपिया तुम स्त्रिया युतिया क्या करो, यात अब जाओ, यात अबला कहाँ जाओ, व्रजम वृंदावन जाओ, जहां से तुम आए थे अपने अपने घर लौटो। अभी सिद्धा मया इमं रंशत क्षपाः, तो तुम्हारा जिस उद्देश्य से तुमने ये व्रत किया वो तो सिद्ध हुआ, तुम लोगों का संकल्प सिद्ध हुआ, अनुभव किया ही आपने, मैंने आपका स्वीकार किया है। तो अब हम पुनः मिलेंगे, भविष्य में आने वाले किसी रात्रि को हम पुनः मिलेंगे, ऐसा भगवान का है। और आप देखिए, अगर हम एक मिनट में थोड़ा पता लगवा सकते हैं, तो ये व्रत हुआ था कौन से महीने में, मार्गशीर्ष, गुड। तो अब पुनः भगवान उनको मिल रहे हैं एक रात्रि को, और रात्रि है 10 महीने बीत गए, देख लो उसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें होगा। तो शरद रात्रि को, शरद की पूर्णिमा, शरद की पूर्णिमा मतलब कौन से महीने की पूर्णिमा, ये शरद ऋतु की पूर्णिमा, ये अश्विन अश्विन महीने के अंत में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को भगवान अब गोपियों को मिलेंगे। और अश्विन के बाद होगा कार्तिक, और कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष के अंत में जो वचन दिया था या प्रस्ताव रखा था, हाँ पुनः मिलेंगे एक रात्रि को पुनः मिलेंगे, तो 10 महीने बीत गए और फिर भगवान अब उनको मिल रहे हैं। स्वागतम ओ महाभागा, हे भाग्यवान गोपियों, स्वागतम सुस्वागतम, प्रियम की करवानी वह, और आपका प्रिय, मैं क्या प्रिय कर सकता हूं बताओ तो। वैसे भगवान ने उस रात्रि को ही क्यों गई गोपिया, उस रात्रि को भगवान ने मुरली वादन से सब गोपियों को आमंत्रित किया। सभी गोपियों को आमंत्रित करने की ये विधि है, बुलावा भेजने की, आप सबको यहाँ बुलाने के लिए यहाँ के मंदिर के अध्यक्ष ने तो इनविटेशन कार्ड्स भेजे या टेलीफोन पर आमंत्रित किया आप सभी को। लेकिन भगवान ने गोपियों को कैसे बुलाया, मुरली वादन से। मुरली वादन उसमें कोई भाषा भी, उसमें कोई संदेश भी होता है, केवल नाद कोई गान ही नहीं होता है। भगवान बोलते भी हैं, या गायों के अलग अलग नाम भी कहते हैं भगवान मुरली के वादन के साथ। मुरली को बजाया और सारी गोपियां भागे दौड़े आई, या लिखा है गोपियों के जो कुंडल थे ऐसे जब आ रही थी तो कुंडल ऐसे नीचे लटक नहीं रहे थे, क्या हो रहे थे, ऐसे पीछे की ओर ऐसे थे, क्यों, भाग रही थी। कोई खड़ा ही हो जाता है तो कुंडल भी ऐसे लटकेगी, कोई थोड़ा चल रहा है तो ऐसे हो सकती है, लेकिन केवल दौड़ रहा है तो पीछे की ओर झुक के लटकेगी। तो ऐसा वर्णन सुखदेव गोस्वामी का, देखिए कितना ध्यान पूर्वक एक एक बात को वो नोट कर रहे हैं, वर्णन सुना रहे हैं, या उससे कुछ संकेत दे रहे, कितने तेजी से वो भगवान की ओर वहां गई। तो भगवान ने ही मुरली वादन करके सभी को बुलाया, और वहां पहुंचते ही वैसे स्वागतम तो कहा, लेकिन फिर कहते हैं क्यों आ गई तुम, अरे तुमने तो बुलाया, आप बता दो क्यों आपने बुलाया था हमें। ये जवाब वैसे कृष्ण को देना चाहिए था, आपने हमें बुलाया तो आप ही बताइए क्यों बुला, क्या प्रयोजन था। लेकिन प्रेम की भाषा कुछ सीधी नहीं होती, उसमें टेढ़ी चाल होती है। तो कृष्ण भी जानते हैं, उन्होंने ही बुलाया, लेकिन पूछ रहा है व्रजस्य अनामयम कश्चित मृत आगमन कारणम, कहो कहो वृंदावन से तुम यहां पधारी हो तो इस आगमन का क्या कारण है। ऐसे को तो बड़ी मधुर लीला तो राधा कृष्ण की है, राधा पंडरीनाथ की जय, राधे जय पंडरीनाथ की जय। तो खूब वार्तालाप होता है और फिर अंत में कुछ सीधी बात और कुछ प्रेम के व्यापार, स्नेह भरा आदान प्रदान प्रारंभ होता है। अंग संग गोपियों को कृष्ण स्पर्श कर रहे हैं, उनको तो प्रसन्न है दोनों भी पक्ष, गोपिया राधा रानी भी वहां है और कृष्ण। कुछ ही समय बीत गया, इतने भगवान अंतर्धान होते हैं। तत्रैवान्तरधीयत तासां ततः सौभागमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अन्तरधीयत। वहां से भगवान क्या हो गए, अंतर्धान हुए। ये अंतर्धान केवल भगवान ही हो सकते हैं, मतलब अभी अभी थे, सामने ही थे और यहां तो थे, अभी है कि नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन तो भी कुछ ऐसा ही अदृश्य हो के ऐसे ही खड़े तो नहीं है, है नहीं। ऐसी विद्या भगवान ही जानते हैं, या मनुष्यों को ऐसी विद्या अगर पता होती तो चोरों का काम आसान हो जाता। देखिए हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम झट से बढ़िया, ऐसा अंतर्धान होने की कला अगर हम जानते तो हम क्या क्या नहीं करते। बैंक में गए, अंतर्धान हो गए, फिर पकड़ो 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 ऐसे कहने के अवश्य अंतर्धान हो गए। तो केवल भगवान ही अंतर्धान हो सकते हैं। अभी अभी थे और अब उनके समक्ष मध्य में नहीं रहे, और अब गोपियों की स्थिति, ये रास पंचाध्याय है, 29, 30, 31, 32 और 33, पांच अध्याय 10वें स्कंद के रास पंच अध्याय कहलाते हैं। तो एक अध्याय यहां पर समाप्त हुआ, जब भगवान अंतर्धान हुए तो एक अध्याय हुआ। अब दूसरे अध्याय में गोपिया खोजेगी कृष्ण को, और सबसे पूछेगी, जो भी मिलता है उनको, उन सभी से पूछेगी, कच्चित् तुलसी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी को भी पूछा रास्ते में, तुलसी उसके पहले, कुबर अशोक नाग पुन्नग चंपकाहा, ऐसे कई पौधे फूलों के छोटे छोटे वृक्ष थे, उनसे पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर तुलसी से पूछा, तुम्हारा और कृष्ण का तो इतना घनिष्ठ संबंध है, हे तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः, नमस्कार। तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। फिर मालती आदि कई उनसे पूछती है, फिर बड़े बड़े, तो ये तो छोटे छोटे वृक्ष है या पौधे हैं, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन ये जो वृक्ष है ना, उन्हें तो देखा होगा या अब भी देखते होंगे, जहां भी कृष्ण है 5 मील या कहीं पर दूर दूर, वहां से उनको दिखाई देता होगा, क्योंकि बहुत ऊंचे हैं, तो वहां से वो देखते होंगे कृष्ण की ओर, कृष्ण को। तो उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। एक हरणी, पति पत्नी की जोड़ी वहां आए, हिरण और हरिणी, हरिण और हिरण, हरिणी, उनको लगा देखो ये कैसी अच्छी जोड़ी है, पति और पत्नी साथ में ही चल रहे हैं, ऐसा सौभाग्य कभी हमें प्राप्त होगा कि हम भी कृष्ण के साथ साथ चल सकते हैं। हमारे कृष्ण कहा और हम देखो या मर रही है, खोज रही है, ये देखो जोड़ी कैसी साथ में है ना। तो उनसे पूछती है, अरे तुमने देखा है कृष्ण को? अब पौधे वृक्ष के उपरांत अब हिरण को पूछ, तो उनको पूछते ही, हिरण को पूछते ही हिरण क्या किया, चलने लगा। और हिरण चलता था और मुड़ के देखता भी था, तो गोपियों ने सोचा कि हिरण की जोड़ी कह रही है, आओ आओ हम तुमको कृष्ण के पास ले जाएंगे, कम कम। तो दौड़ते हैं, तो वे जाते ही रहे, गोपियां पीछे पीछे जा रही थी इस आशा से, ये जरूर जानते होंगे इसीलिए तो हमको इशारा कर रहे हैं, फॉलो अस। कुछ समय के बाद ये हिरण हिरणी छिप गए, तो गोपियों ने सोचा, हाँ, कृष्ण यही कहीं पास में होने चाहिए। तो हिरण हिरणी नहीं चाहते कि कृष्ण को पता लगे इस बात का कि उन्होंने गोपियों को वहां तक लाया, इसीलिए ये हिरण हिरणी की जोड़ी कहीं अभी छिप गई, ऐसी गोपियां सोचती है। ये तो गोपियों की केवल कोरी कल्पना ही थी, हिरण हिरणी तो उनको पता नहीं था कृष्ण का। कृष्णा कृष्ण अन्वेषण कातरा लीला भगवतस्तास्ता कस्याचित्। तो ये अन्वेषण का खोज चलता रहा और खोज कर रही, तो मतलब चिंतन भी तो हो रहा था, कहाँ है कृष्ण। तो उनकी उस विरह के मारे उनकी कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना, कृष्ण कैसे है, कृष्ण चित्त चोर है। कहते कि गोपियों के वस्त्र तो भगवान ने लौटा दिए उस व्रत के अंतिम दिवस जो लीला हुई, लेकिन भगवान ने गोपियों के चित्त की चोरी करके अपने साथ ही रखा उनका चित्त। गोपियां वस्त्र पहन के तो गई, लेकिन उनकी चेतना चित्त कहाँ था, कृष्ण के पास। कृष्ण चित्त की चोरी की। तो ये माखन चोर और वस्त्र चोर कैसे चोर भी है, चित्त चोर भी है। तो तब से अधिक अधिक चिंतन करती रहती थी इस जो चित्त चोरी करके ले गया, और अभी अभी आके दर्शन दे के पुनः कृष्ण गए, उन्होंने पुनः चोरी की चित्त की उनके। तो चिंतन बढ़ ही रहा था, तो गोपियों ने फिर, यह वर्णन आता है इसी अध्याय में, उन्होंने कृष्ण की अलग अलग लीला खेलने लगी, और उस लीला में वो स्वयं ही कृष्ण की भूमिका निभाने लगी। कोई कहने लगे, गिरिराज गोवर्धन की, और धारण गिरिराज को धारण करने वाली स्वयं गोपी ही बन गई। कोई पूतना का वध, एक गोपी बन गई पूतना और दूसरी बन गई कृष्ण, और वो कृष्ण पूतना का वध कर रही है। इस प्रकार कई सारे लीला खेल रही है जिसमें कृष्ण की भूमिका स्वयं ही निभा रही है। अब पुनः खोजने लगी, एवं कृष्ण प्रच्छमाना वृंदावन लतास्तरुन व्यजचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः। जो खोजी कर ही रही थी तो कुछ गोपियों ने कुछ व्यक्तियों के चरण चिन्ह वहां देखे और देखते ही उन्होंने और गोपियों को, ए गोपियों दौड़ो दौड़ो, मिल गए आ जाओ आ जाओ। तो सब भागे दौड़े आए, देखो देखो जस्सी देखो देखो तो सही। तो बैठी होगी ध्यान से देख रही, निहार रही है चरण कमलों को, और चरण कमल के जो चिन्ह थे, चरण चिन्हों के अंदर अलग अलग चिन्ह थे, चिन्हांकित थे वो चरण। तो उनकी मदद से, चरण चिन्हों की मदद से, वैसे पहले वो राधा रानी को ही गोपियां मिली और फिर उन्होंने राधा और गोपी जय राधा भंडारनाथ की, फिर गोपी गीत गाया, गोपियों ने गीत गाया, तो फिर कृष्ण भी मिले। और कृष्ण जब मिले तो सभी गोपियों के साथ भगवान ने रास क्रीड़ा रची और महारास का उत्सव उस रात्रि को हुआ। राजथाई गौर प्रेमनंदे हरी हरी बोल।